أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آج سکسیزفل فیملی کی ساتویں کلاس ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد دو مزید کلاسز ہوں گی، اور جس پوری کلاسز میں جو فوکس کیا تھا ہم نے وہ مبدل کو فوکس کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان مبدل کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، وہ کیسے گرو کرتی ہے، نرچر ہوتی ہے، اس کی غذا کیا ہے. ویسے ہر چیز کی اپنی ایک غذا ہے، اس کو وہ غذا ملتی ہے تو وہ گرو کرتی ہے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت جو کہ مبدل میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور آگے بھی کیا جاتا ہے. اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے چند نکات ہمیں بیان کر کے مبدل کے ایشو کو کمپلیٹ کر دیں، جبکہ یہ کمپلیشن بھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے لیکن ایک لیول پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس کے مزید اس میں ڈیپتھ ہے. لیکن ہم ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے ایک اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ بات ہمارے لیے آسان ہو، اس کے لیے ہم آگے بڑھیں. تو پچھلی گفتگو میں جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ سوال کیا تھا کہ محبت کی جاتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے. ہم نے بتایا تھا محبت کی بھی جاتی ہے اور محبت ہو بھی جاتی ہے، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی محبت کہ انسان معرفت رکھتا ہو، جانتا ہو. اگر نہیں جانتا ہوگا، نہ اس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، تو محبت نہیں ہو سکے گی. لیکن اگر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بات کی ہوگی تو ضرور محبت ہو سکتی ہے. اور محبت کی جو ہائٹ ہے، جو اس کی الٹیمیٹ ہائٹ ہے، وہ خدا کی ذات ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ ایک پرفیکٹ چیز کو چاہتا ہے، پرفیکشن چاہتا ہے، اور وہ پرفیکشن کے جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ خدا کی ذات ہے. جب انسان اصل حقیقی خدا کی معرفت کو حاصل کرنے لگتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی ایک پرفیکٹ ذات ہے اور اسی سے محبت کرنی چاہیے، تو وہ اپنی کمال کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے. لیکن انسان جب کبھی غلطی کرتا ہے یا غلط سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنے شریک حیات میں پرفیکشن کو چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شوہر ہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، یا بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. کیونکہ میں محبت کرتی ہوں، یا وہ سوچتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں اس کو کامل ہونا چاہیے، اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ خامیاں، یہ کمی تو انسان میں بہت زیادہ ہے لیکن خدا کی ذات میں نہیں ہے. اس لیے اس کا فوکس خدا کی ذات ہونا چاہیے اور پھر انسان کو دیکھنا چاہیے. یعنی ہمیں خدا کے تھرو، خدا جس طرح انسان کو پسند کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کو چاہتا ہے، اسی طرح ہمیں خدا کی طرح سے، خدا کے صفات کے ساتھ ہمیں انسان کے ساتھ بھی برخورد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے. اس لیے اگر کوئی انسان محبت کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کی محبت کن سورسز کے ساتھ ہے. صرف حواس تک ہی محدود ہے، یا عقل تک محدود ہے، یا اس سے آگے بھی ہے؟ کس طرح سے وہ محبت کر رہے ہیں، یا کوئی اس سے اگر محبت کر رہا ہے تو وہ کس طرح کر رہا ہے؟ یہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں جب محبت کو لے کر آتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. یعنی ایک لیول ہوتا ہے کہ جس میں حصے محبت ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، دوسرے لیول میں حصے محبت کے ساتھ، یعنی جو سینسز سے محبت، سینسز کے ذریعے جو محبت ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں عقلی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر قلبی تعلق بھی ہونا چاہیے. یعنی تینوں طرح سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف عقلی ہو حصے نہیں ہو، یا حصے ہو قلبی نہیں ہو، نہیں، تینوں کا کمبینیشن ہے، تینوں اپنی جگہ ہونی چاہیے. لیکن فرسٹ پرائیورٹی جو ہے، امپورٹنس جو ہے اس محبت کو، وہ یہ ہے کہ کیونکہ خدا کو یہ عمل پسند ہے اس لیے مجھے اپنی شریک حیات سے محبت ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان سے محبت ہونی چاہیے، وہ زیادہ پاورفل ہے. پھر جب میاں اپنی بیوی کے لیے اس کے حقوق ادا کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کو توجہ دے گا، وہ تمام چیزیں کرے گا، تو پھر بہت ڈیپ میں محبت شروع ہو جائے گی، ڈیپ میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ شروع ہو جائے گی، ہم ڈیپ میں جانا شروع ہو جائیں گے. लेकिन क्योंकि हम पहले ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो गहराई नहीं आ पा रही, वो मैच्योरिटी नहीं आ पा रही। सब कुछ लाइट है, सब कुछ हल्का हल्का है। यानी हमसे पूछा जाए अगर कि आप शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं, तो हम कहेंगे बस गुजार रहे हैं। ताकि जो आप गुजार रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे शादीशुदा जिंदगी बहुत ज़बरदस्त है, आप इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और इससे एनर्जाइज हो और दूसरों को भी आप एनर्जाइज करें। क्योंकि ये सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी के अंदर एक लोग होते हैं, आप सोसाइटी के लोगों को देख के बता देती हैं कि ये लोग कैसे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये लोगों की मदद करते नहीं करते। यही सोसाइटी की कैफियत घर के अंदर भी होती है, घर के अंदर का भी एक एनवायरमेंट होता है, मियाँ बीवी का अपनी रिलेशनशिप का एक एनवायरमेंट होता है, एक फैमिली का अपना एक एनवायरमेंट होता है। ये एनवायरमेंट आपको बता देते हैं कि इनके अंदर कैसा माहौल है। जैसे आपको कोई अपने घर में दावत दे, आप उस घर में जब जाएंगे तो थोड़ी देर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस घर में कैसा एनवायरमेंट है। इसी तरह मियाँ बीवी की रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसे ही कि आपकी मोहब्बत जो है वो उसका ताल्लुक हिस्से भी होता है, आपकी मोहब्बत का ताल्लुक अकल से भी होता है, और आपकी मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो कल्बी हवाले से भी होता है। फिर हमने उसकी कुछ एग्जाम्पल आपको बताई थी कि अच्छा इंसान होता है तो उसे सबको मोहब्बत होती है और ये तमाम चीज़ें। अब हम उसी से कनेक्टेड, उसी से आगे बढ़ रहे हैं और हम आज दो तीन फैक्टर्स को यहाँ बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले जलसे में और दूसरे जलसे में एक प्रॉब्लम आपको दिया था। प्रॉब्लम ये बताया था कि एक लड़की है, शादी होकर आई है और उसके मियाँ उससे परेशान है कि वो बहुत ही चिड़चिड़ी सी है और बदतमीज़ी से बात करती है और अपने मियाँ को जो है वो बातें सुनाती है, सास से भी लड़ती है, सब परेशान है कि ये कौन आ गई हमारे ख़ानदान में जिसने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। फिर हमने आपको एक हदीस सुनाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई तुमसे दूर हो रहा है तो तुम उससे नज़दीक हो जाओ, कोई अगर झगड़ा कर रहे तो तुम उसे माफ़ कर दो। ये फिर हमने आपसे एक नतीजा निकलवाया था, तो आपने सबने ये नतीजा दिया था कि उसको समझाना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, तमाम बातें। अब दोबारा इसको हम लेकर आते हैं और आपने कुछ और बातें भी यहाँ सुन ली। मिसाल के तौर पे हमने सच्चाई की बात की, हमने माफ़ करने की बात की, माफ़ करने में फिर हमने ये भी बताया कि किसको माफ़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इन तमाम बातों को जानने के बाद अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे ऐसी लड़की के साथ या ऐसे मर्द के साथ कि जिससे उसके अपने घर वाले या दूसरे जिस घर में वो गया है या वो गई है वो लोग उससे परेशान हैं, बेजार हैं उसकी बदतमीजी से, उसके लैंग्वेज से, उसके एटीट्यूड से, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? यानी आपसे कोई मशवरा मांगेगा कि बहन ये बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे घर में ऐसी खातून आ गई, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि इसके इस खातून के साथ हम क्या सलूक करें? कुरान की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए? जो हमने काफ़ी सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी हैं, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे करें?
It's not a very specific thing, and you don't know what their family situation is really like either, how they're treating her. So there could be flaws that they're not seeing of themselves, that they're not looking at, and they're just seeing someone different coming with a different perspective is wrong. But she might be wrong. But it's hard to say when you're outside, on the outside.
सही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए ये जानना, और इस क्लासेस का एक मकसद वो यही था बताना कि एक हदीस सुन के, दो हदीस सुन के हम फैसला नहीं कर सकते किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी के रिलेशनशिप के बारे में कि हदीस में मैंने ये सुना था, उस मजलिस में मैंने ये सुना था, तो ये यहाँ फिट हो रहा है। नहीं, आपके पास एक बड़ा पिक्चर होना चाहिए, उस बड़े पिक्चर में यानी उस अहदीस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इस केस को हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे, पहले उसका क्राइटेरिया क्या है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे, फिर इसको इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में रख के देखेंगे कि इसकी क्या सही है क्या गलत है। तो ये एक स्टेटमेंट, एक वाक्य सुनने से आप फौरन नतीजा नहीं देंगी, आप फौरन रिजल्ट नहीं देंगी, आप भी कहेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं इतना जानती हूँ कि मैंने ये सुना है, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या है ये मुझे नहीं मालूम। आप अपने आप को हमेशा सेफ रखेंगे, मगर ये कि आप इस सब्जेक्ट में आप अपने आप को इतना आगे ले जाएं कि आप केसेस को स्टडी करने लगे और समझने लगे कि जहाँ पे आप हदीस की रोशनी में आप प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी दें या उसको अपने हद तक अगर आप जानते हैं तो आप उसको अप्लाई करें, लेकिन फौरन जवाब दे देना वो सख्त है। क्योंकि हमने उसमें ये किया था, आपको हदीस सुना दी थी और आपको वाक्य सुना दिया था, आपका माइंड भी वैसे तैयार हो गया, आपने सबने कहा नहीं कोई बात नहीं इसको माफ़ कर देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए और उसको ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए। लेकिन हमने कल जो आपको हदीस सुनाई थी या परसों लास्ट क्लास में, उसने ये बताया था कि अगर इंसान इस कैरेक्टर का है अगर उसे माफ़ किया जाए तो वो सर पर चढ़ जाएगा और मज़ीद तंग करेगा, शोर शराबा करेगा। तो अगर ये केस ऐसा है तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे उसको माफ़ कर देंगे, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं करेंगे कि इस पर जुल्म करेंगे, नहीं, हमें अदल करना है और उसको उस जगह पे रखना है। ये सबसे बड़ा काम है पहले ये कि हम अदल करेंगे। अदल के साथ साथ जो है फिर वो अफ है, और जो कुरान की आयत है या मोरू बिल अदल वल एहसान, फिर एहसान है। तो इसलिए अगर कोई केस आता भी है तो उसको फौरन आप फैसला ना करें, आप उसको अच्छी तरह इवेल्यूएट करें, सारी इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद फिर उसके लिए आप आगे स्टेप उठाएं, चाहे अपनी ज़िंदगी में हो चाहे किसी की भी ज़िंदगी में। अब हम आ रहे हैं उस नए एरिया की तरफ कि जिसमें मवद्दत जो है वो मज़ीद कैसे डेवलप होके स्ट्रांग होगी या बीवी ज़िंदगी में। जैसा कि हमने बताया था कि इंसान चाहता है कि चीज़ हमेशा जो खूबसूरत चीज़ होती है वो इंसान को पसंद होती है, इंसान को अच्छी लगती है वो चीज़ जो खूबसूरत होती है। तो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में भी हवास के ज़रिए जो चीज़ अच्छी नज़र आती है वो पसंद आती है, और ख़ास तौर से हमने बताया था कि मर्द आँखों के ज़रिए अट्रैक्ट होता है, आँखों से अट्रैक्ट होता है, उसके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बीवी के लिए ज़रूरी है और मियाँ के लिए भी ज़रूरी है कि दोनों अपने आप को फिज़िकली फिट रखें, स्मार्ट रखें, और अपने आप को हमेशा सजा के रखें। ख़वातीन हमेशा अपने आप को डेकोरेटेड रखें, यानी मेकअप में रहें, यानी वो वाला मेकअप नहीं जो फैशन वाला मेकअप है, मुराद ये कि अपने शौहर के लिए वो ज़रूर अपने आप को तैयार रखें। ऐसा जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन को जब किसी दावत में जाना होता है, किसी शादी में या मिलाद में, तो वो तैयार होती है, खूब तैयार होकर फिर जाती हैं, लेकिन मियाँ ऑफिस से घर आ रहा है तो उसके लिए वो तैयार नहीं हो रही होती। तो वो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो शादी, अब आप कहेंगे शादी को 5 साल हो गए, शादी को अब तो 9 साल हो गए, अब तो 15 साल हो गए, अब ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। इंसान जैसे खुशबू, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो या आपकी उम्र 20 साल हो, खुशबू आपको वैसे अच्छी लगेगी। इसी तरह मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि उसकी बीवी हमेशा अच्छे गेटअप में हो, तैयार हो, वो उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, वो कहेगी बस अब ठीक है, अब हो गया, वो था एक ज़माना था, अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, कि उसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ से कम हो जाएगी। इसी तरह मियाँ अगर अपने आप को लेज़ी रखेगा और अपने आप को तैयार नहीं रखेगा, फिट नहीं रखेगा, तो उसकी बीवी की अपने शौहर के लिए अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये फितरी तकाज़ा है, यह हमारी फितरत में। तो जो चीज़ भी खूबसूरत रहेगी, स्मार्ट रहेगी, फिट रहेगी, अपडेट रहेगी, वो अट्रैक्ट करेगी। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आप ऐसा कपड़ा पहनना चाहती हैं जो फैशन में हो, आप आउटडेटेड कपड़ा पहनती हैं और कहते हैं आज का ट्रेंड किस चीज़ का है, वही पहनना है, वैसे ही घर सजाना है, वैसे ही चीज़ें डेकोरेट करनी है, जाकर आप शॉपिंग करती हैं, देखती हैं किचन का कौन सा आइटम आजकल नया आया है, वैसी डिशेस खरीद के ले आती हैं, क्लासेस ले आती हैं, आज के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है। तो फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह का होता है कि वो चाहता है शख्स कि मेरी बीवी भी आज के हिसाब से बिल्कुल फिट रहे, जैसे कि ख़वातीन को होना चाहिए। इसी तरह मर्द को भी ऐसे होना चाहिए कि मर्द भी अपने आप को हैंडसम और स्मार्ट बना के रखे, ताकि उसकी बीवी की अट्रैक्शन हमेशा ज़िंदा रहे। ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप के हवाले से, ताकि जो बाहर दूसरी अट्रैक्शन है वो उसको अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि हमने आपको बताया कि मर्द अट्रैक्ट किस तरह होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है इन मियाँ बीवी की रिलेशनशिप के अंदर। इसी रिलेशनशिप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात आती है, और ये ड्राइव जो है ये मुख्तलिफ ख्वातीन के साथ मुख्तलिफ होती है, मर्द के साथ मुख्तलिफ होती है। इसलिए इस रिलेशनशिप को जो चाहे दुनिया के साइकोलॉजिस्ट हों या वेस्ट की रिसर्च हो या इस्लामिक रिसर्च हो, दोनों ये इस बात पर इत्तेफाक करती है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ताकि दोनों इस जिससे शादी स्टार्ट हुई और जिससे मोहब्बत मवद्दत पैदा होना शुरू हुई ये स्ट्रॉन्ग रहे, ये कंटिन्यू रहे। इसकी तैयारी हमेशा से रहनी चाहिए और एक दूसरे को भरपूर तरीके से इंटरटेन करना चाहिए ताकि वो जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो गर्मी है वो कायम रहे। बहुत सारे आजकल जो डिवोर्स रेट जो बढ़ता जा रहा है उसका एक बड़ा इशू, उसका एक बड़ा फैक्टर जो है वो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप जो है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, या बीवी मियाँ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती तो वो उसको उसके साथ सही तरह से रिलेशनशिप नहीं कायम कर पाती, या मर्द नहीं कर पाता जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एक दफ़ा खुद एक फिज़िकल रिलेशनशिप एक चीज़ होती है और एक इससे रिलेटेड चीज़ होती है, यानी अगर इंसान स्ट्रेस में, अगर इंसान टेंशन में, अगर इंसान डिप्रेस्ड है तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप नहीं कायम कर पाएगा। जब वो रिलेशनशिप नहीं कायम कर पाएगा तो वो प्लेजर भी नहीं ले पाएगा, और जब प्लेजर नहीं ले पाएगा तो फिर उसको लगेगा कि आई एम नॉट इन्जॉइंग माई लाइफ। इसलिए मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों खुश हो ज़िंदगी में, ताकि उनकी ये इन्जॉयमेंट जो कि मर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस होती है ये कायम रहे, ताकि उसकी रिलेशनशिप अपनी बीवी से सही रहे। बास ख़वातीन के लिए भी बहुत फोकस्ड होती है,